पहले उन्होंने कहा योग का भोग मत करो और इसके अर्थ में यह बताया कि जब स्वतः अभिव्यक्त होने वाले योग में प्रतिपादित योग नहीं अभ्यास के द्वारा मन को वश में करना, चित्त को स्थिर करना, इंद्रियों को विषय विमुख करना, इन सब बातों का जब तक अभ्यास चलता है तो अभ्यास वश जो बाह्य और आंतरिक वृत्तियों में थोड़ी सी शांति मिलती है उसको महाराज कह रहे हैं प्रतिपादित, अभ्यास द्वारा प्राप्त किया हुआ। और निष्कामता पूर्वक कर्तव्य निष्ठा के अंत में स्वभाव से जो शांति आती है उसको आने वाला स्वतः होने वाला योग कह रहे हैं। तो शरीरों से असंगता में एक शांति की अभिव्यक्ति होती है। आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक सर्वस्व समर्पण में शरण्य की कृपा में एक शांति आती है। और इस प्रकार से जो अपने आप आने वाली शांति है उसको महाराज कह रहे हैं कि उसका भी भोग मत करो। क्या होता है इसमें तो हम प्रायः अनेक साधक इसमें शामिल हो जाएंगे। हम सब लोग मूक सत्संग की जब चर्चा करते हैं तो समय समय पर ऐसा वर्णन करते हैं कि इतनी देर तो इतना अच्छा लगा, ऐसी शांति रही, कोई हलचल नहीं थी अपने में, किसी प्रकार का चिंतन नहीं था, और इतनी देर के बाद तो ऐसा होने लगा, ऐसा होने लगा, होने लगा। तो हम शांत रह सकते हैं, वृत्तियों को अंतर्मुख कर सकते हैं। इस प्रकार का भास जो है उसके संबंध में महाराज कह रहे हैं कि ये योग का भोग है। कैसे कि शांति की अभिव्यक्ति जो होती है वह एक प्राकृतिक तथ्य है। शांति गुण जितने हैं वे या तो प्राकृतिक मानिए, दैवी मानिए, अथवा विश्वास की दृष्टि से अनंत परमात्मा का स्वभाव मानिए। उसके साथ अहम को लगा देना योग का भोग है। तो अब क्या किया जाए? तो प्रारंभ में मुझे ऐसा सूझता था और मैंने अनेक बार महाराज जी से निवेदन भी किया था कि महाराज जन्म जन्मांतर का थका हुआ आदमी, पुरानी बात तो याद नहीं है, पिछले पिछले जन्म में किन किन बातों से थके थे सो तो याद नहीं है, लेकिन इस बार की याद है। और वो क्या है कि अंतर के संघर्ष और बाहर के संघर्ष दोनों ही में पड़ा हुआ आदमी बुरी तरह से थक जाता है। क्रोध करना नहीं चाहते हैं, क्रोध आ ही गया। लोभ के वश दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना नहीं चाहते हैं, लोग प्रेरित होकर कर ही बैठे। तो कहीं क्रोध सता रहा है, कहीं लोभ सता रहा है, कहीं अभिमान सता रहा है, कहीं इन्फीरियोरिटी का दुख है, कहीं सुपीरियोरिटी का मद है। तो ये सब विकार जो हैं वो व्यक्ति को थकाते हैं। और साधक कोटि के लोग जो होते हैं वो अंतर में उठने वाले विकारों पर विजय पाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। कितनी देर लगेगी किसकी वो तो अपनी अपनी तैयारी की बात है ना भाई, कौन कितनी जल्दी पार करेगा। लेकिन जो साधक कोटि के लोग होते हैं, सत्संगी लोग होते हैं, वो अंतर से उठने वाले विकारों को संभालते रहते हैं, कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं कि भाई उनको उनके अनुसार हम काम तो नहीं करेंगे। तो ये अंतर अंतर का संघर्ष है। मन चाहता है कुछ, विवेक कहता है कुछ, परिस्थिति कहती है कुछ, बड़ा फर्क होता है सब में। तो इनके संघर्ष में भी काफी शक्ति खर्च होती है और आदमी थकता है। और बाहर का भी संघर्ष है, बाहर के अभियोजन में, परिस्थितियों की प्रतिकूलता में, निकटवर्ती प्रियजनों की प्रतिकूलता में काफी आदमी को जूझना पड़ता है, थकना पड़ता है। तो पहली पहल सत्संग के प्रभाव से जब भीतर भीतर से आराम होने लगा तो मैंने महाराज जी को बताया कि महाराज जी जीवन भर का और जन्म जन्मांतर का इन सब बातों से थका हुआ आदमी, उसको जब शांति मिलेगी तो उसको तो बहुत अच्छा लगता है। वो कैसे निकलेगा उसमें से, उसमें समाएगा तो उसको तो बहुत प्रिय लगेगा। तो क्या करें? तो समझी महाराज ने एक सुझाव दिया था, बहुत स्वास्थ्यकर और बहुत ही उपयोगी सुझाव है। उन्होंने कहा था कि देखो, शांति का आना तो स्वाभाविक है साधक के जीवन में और अनिवार्य भी है, क्योंकि उसके बिना उससे आगे किसी प्रकार का कोई विकास होता नहीं है। तो उसका आना अनिवार्य भी है, स्वाभाविक भी है। लेकिन तुम एक काम करो कि जब शांति आवे, उसमें विश्राम मिलेगा, अपने को आराम लगेगा, तो उतना हिस्सा तो जरूरी है, शुरू शुरू में ले लो आराम। लेकिन भाई, अगर मंजिल को तुम पड़ाव को तुम मंजिल समझ के बैठ जाओगी तो आगे नहीं बढ़ना होगा। ये सुझाव दिया। अब रास्ते की चीज है ना, शांति के बाद तो देह से तादात्म्य तोड़ने का प्रश्न उठेगा, फिर शांति के बाद निज स्वरूप से अभिन्न होने का प्रश्न आएगा, फिर शांति के बाद भगवत भक्ति और भाव की वृद्धि का प्रश्न आएगा। तो महाराज जी ने कहा कि अगर इस पड़ाव को, साधन के रास्ते में जो एक पड़ाव है, उसी को अगर मंजिल समझ करके बैठ जाओगे तो आगे का विकास नहीं होगा। अच्छी बात। तो बैठे नहीं कैसे, तो शांति तो इतनी मीठी लगती है। और मैं नहीं जानती हूँ कि अनुकूल और सुखद परिस्थितियों में पले हुए लोगों को कैसा लगता होगा, वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन अपनी बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि प्रतिकूलता और कठिनाइयों में जो लोग पले हैं, उनको वह शांति कितनी प्यारी लगती है। भीतर और बाहर का थका हुआ है आदमी जब एकदम से रोम रोम बिल्कुल शांत स्निग्ध हो जाता है, न भीतर कोई चिंतन है न बाहर कोई संघर्ष है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। तो जैसे कि गर्मी में धूप में तपा हुआ कोई व्यक्ति हो और वृक्ष की शीतल छाया उसे मिल जाए, तो उस छाया में कितनी सुखद अनुभूति है ये उसी को पता चलेगा। एयर कंडीशन में बैठे हुए तो नहीं पता चलेगा कि वृक्ष की शीतल छाया कैसी मीठी होती है। तो ये उदाहरण दिया मैंने, अपने अपने ढंग से आप लोग अर्थ लगा लेंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई हर्ज नहीं है, वो तो प्रभु का मंगलकारी विधान है ही, थके हुए को विराम देने ही के लिए शांति की अभिव्यक्ति पहला कदम है साधक के जीवन में सफलता का। तो वो तो ठीक ही है, आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम प्रारंभ से इस बात को जानते हो कि शांति जो अभिव्यक्त हुई है उसके आगे भी मेरा जीवन है, उसके आगे भी मेरा जीवन है, तो अगर लक्ष्य पर दृष्टि तुम्हारी रहेगी तो वो शांति जो है तुम्हें बांध नहीं सकेगी, उसको जो काम करना है सो कर देगी, थकावट मिटा देगी। और लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार की शक्तियों की वृद्धि करा देगी। इतना काम शांति का है, लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की शक्तियों का। कैसे? शांति के संपादन से कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के जीवन में स्फूर्ति आती है, जिससे कि वो कर्तव्य पालन कर सके। शांति की अभिव्यक्ति से अहम में से विचार का उदय होता है, जो सत असत का विभाजन कराता है। शांति की अभिव्यक्ति में से भाव की वृद्धि होती है, जो विश्वास को सुदृढ़ बनाती है, सजीव बनाती है, भगवत प्रेम से अभिन्न कराती है। तो इस दृष्टि से शांति का संपादन सभी भाई बहनों के लिए, सब प्रकार के साधकों के लिए एक अनिवार्य तत्व है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उस शांति में अद्भुत अद्भुत गुणों का विकास होता है, बहुत से भौतिक गुणों का विकास भी होता है और बहुत से अलौकिक गुणों का विकास भी होता है। तो साधक यदि उन स्वतः विकसित होने वाले गुणों को अपनी विशेषता मान ले तो उसका विकास रुक जाएगा, ये योग का भोग हो जाएगा। जैसे कि आप बैठे हैं शांतिपूर्वक और शांति संपादन के आधार पर आपकी अंतः की इंद्रियां सतेज हो गई है, खुल गई है, मान लीजिए ऐसा हो गया है। तो दूर पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति किसी प्रकार की उलझन में पड़ा हुआ है तो उसके मन की बात आपको मालूम हो जाएगी। अगर और किसी भाव से कोई आकर के बैठ गया है तो उसके दिल में क्या भाव है ये सब आपको पता चल जाएगा। तो दूर की बातों को जान लेना, दूर की वस्तुओं को नजदीक प्रस्तुत कर देना और आकृति को गायब कर देना, दृश्य को अदृश्य कर देना, इस तरह की बहुत सी शक्तियां आती हैं शांति संपादन के बाद योग में। तो सचमुच जो नित्य योग के उपासक होते हैं वे लोग इस प्रकार के चमत्कार को कुछ गिनते नहीं, कुछ नहीं सुनते नहीं, मानते नहीं, देखते नहीं, उसकी ओर देखते भी नहीं, ऐसा चलता है। और जो कच्चे साधक इसको अपनी विशेषता मान लेते हैं कि मुझमें इतनी बड़ी विशेषता आ गई कि हम दूसरों की थॉट रीडिंग कर सकते हैं और दृश्य को अदृश्य कर सकते हैं और संकल्प से दूर की वस्तु नजदीक प्रस्तुत कर सकते हैं, ये मेरी विशेषता हो गई, ऐसा अगर कोई मानेगा तो वो योग का भोगी हो जाएगा, उसका विकास रुक जाएगा। एक बात बताई महाराज जी ने। दूसरी बात तो जो इससे भी अधिक गूढ़ है वो उन्होंने कहा, ये वाक्य मैंने आज ही सुना, इस प्रकार की व्याख्या मूक सत्संग और नित्य योग में तो खूब है, पहले से सब दिया हुआ है, लेकिन ये वाक्य मैंने आज सुना जो कह रहे हैं कि इसके विपरीत जो साधक योग का भोग नहीं करते हैं, अर्थात लौकिक तथा पारलौकिक ये जो शक्तियां अभिव्यक्त हुई तो उनके साथ वे अपने अहम को नहीं मिलाते हैं, समझ में आता है, ये मेरी विशेषता है ऐसा करके भी नहीं मानते हैं। कैसा मानते हैं कि ये तो अनंत का स्वभाव है, ये तो प्राकृतिक तथ्य है, ऐसा मानते हैं, अपने को उसके साथ मिलाते नहीं। तो ऐसे जो साधक होते हैं कि अपने को उसके साथ मिलाते नहीं है तो इन साधकों की एक बड़ी भारी विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है तो महाराज जी कह रहे हैं कि स्वभाव से अभिव्यक्त होने वाला जो योग है उसमें एक गति होती है। कैसी विपरीत बात है, देखिए सब प्रकार से कर्म और चिंतन को छोड़कर सब प्रकार से शांत हो जाना ये मेरा पुरुषार्थ हुआ। कर्मेंद्रियों से कोई कर्म न करूं और ज्ञानेंद्रियों से कुछ देखना सुनना सोचना न करूं, सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं में किसी प्रकार के संकल्प विकल्प अथवा चिंतन को प्रवेश न करने दूं। तो संत कबीर ने कहा, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरति निरति फिर हो, कहे कबीर वा क्षणक को कल्प न पावे को। तो एक और तो योगी के लिए पुरुषार्थ में यह बताया गया कि तुम सर्व प्रकार से अप्रयत्न हो जाओ, अचिंतन हो जाओ, अचाह हो जाओ, अप्रयत्न हो जाओ, कोई किसी प्रकार का प्रयत्न तुम्हारे अहम में से स्फुरित ही न हो, इससे योग कहा गया सब प्रकार से शांति। तो बड़ी विचित्र बात है, मनुष्य के अहम रूपी अणु की विलक्षणता है। योग प्रेमानंद जी, अब आपके पंख का चल रहा है। मनुष्य के व्यक्तित्व की बड़ी विलक्षणता है कि अपनी ओर से वो सर्व प्रकार से शांत होगा। स्वामी जी महाराज ने बड़ा बढ़िया शब्द सुना है अप्रयत्न, कहीं भी नहीं पढ़ा होगा आपने इस शब्द को, अप्रयत्न हो जाओ, कुछ मत करो और ऐसा मत करो और वैसा मत करो और शांत हो जाओ और मन को बस में करो और चित्त के बस में करो, कुछ नहीं कहा, कहा अप्रयत्न हो जाओ, सब प्रयत्न तुम्हारे शेष हो गए, अब कुछ भी करनीय रहा नहीं, सब खत्म हो गया। तो बड़ी विलक्षणता है मनुष्य के अहम में, और वो क्या है कि साधक जब ज्ञान के प्रकाश में विश्वास के आधार पर कर्तव्य निष्ठा के परिणाम में जब हर प्रकार से अपने को अप्रयत्न कर लेता है, अप्रयत्न हो जाता है, उसके अहम में किसी प्रकार की सूक्ष्मति सूक्ष्म क्रियाओं का भी स्फुरण नहीं होता, वहीं बंद हो गया। ये नहीं कि मन के स्तर पर आया तो मैंने उसको दबाया, वो नहीं है, वो अहम में से ही स्फुरण ही समाप्त हो गया। तो अप्रयत्न हो गए, तो देखिए कैसी विलक्षणता है। महाराज जी कह रहे हैं कि योग में जो स्वाभाविक गति होती है वो आपको देहातीत जीवन में ले जाएगी। तो ये योग की जो शक्ति है जिसमें ये अलौकिक गति है, उसका आरंभ कब होगा? जब हम हर प्रकार से अप्रयत्न हो जाएंगे तब होगा। तो इधर से सारा बंद हो गया तो वहां से आरंभ हो गया। मुझ सत्संग और नित्य योग वाले ग्रंथ में स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि उसके बाद जबकि साधक को कुछ भी करनीय शेष नहीं है, हर प्रकार से वो अप्रयत्न होकर के बिल्कुल शांति में अवस्थित हो गया, तब उसके बाद उस योग में एक अलौकिक गति पैदा होती है और वो इतनी तीव्र होती है कि उसमें साधक को फिर कुछ सोचना करना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही संपूर्ण अहम को ले जाकर के उसके उद्गम में मिला देती है। तो ये शांति की अभिव्यक्ति क्या हुई? ये शांति की अभिव्यक्ति वह केंद्र बिंदु है जहाँ की भौतिक जगत की ओर बहने वाली हमारी सारी वृत्तियों की शक्तियाँ एक जगह पर आकर के केंद्रित हो जाती हैं। तो ये आधा हिस्सा ये हुआ योग का, ये पूर्व पक्ष है जहाँ पर कि भीतरी बाहरी कर्मेंद्रियों की ज्ञानेन्द्रियों की स्थूल शरीर की सूक्ष्म शरीर की सब वृत्तियाँ सब शक्तियाँ जहाँ पर आकर के बिल्कुल शांत हो जाती हैं, केंद्रीभूत हो जाती हैं, ये योग का पूर्व पक्ष है। और उसके बाद वो विकट घड़ी आती है साधक के सामने कि उस शक्ति में जो अलौकिकता और विलक्षणता सब पैदा होती है, बहुत से साधक लोग बेचारे उसी में उलझ के रह जाते हैं, मानते हैं कि हम बड़े सिद्ध हो गए और सिद्धि के उसमें लोभ में उसको खर्च करने लग जाते हैं, चमत्कार दिखाने लग जाते हैं, और वही व्यक्तित्व की पूजा मैं जब अपने सत्संगी भाई बहनों के बीच में कभी कभी बात करती तो मैं स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए दोनों के लिए करती कि देखो भाई कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक दिन था जब हीरा मोती के द्वारा शरीर को सजा करके हम समझते थे कि बड़े आदमी हैं, होता है ना ऐसा, एक दिन ऐसा भी होता है बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो कीमती कीमती आभूषण पहनो तो लगता है कि हम बड़े आदमी हैं। वही व्यक्तित्व की पूजा वहां तक भी जाती है। अब हीरा मोती का त्याग कर दिया, अब मामूली मामूली पहनने लगे, अब मामूली मामूली खाने लगे और बहुत सादगी अपना ली। अब टाट बिछा के सोते हैं, गद्दी चादर तकिया नहीं लगाते, अब ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, अब एक ही कमंडलू रखते हैं उसी में सब सब्जी रोटी दाल सब मिला के खा लेते हैं, अलग अलग पात्र नहीं रखते। अब जल पीने का पात्र नहीं रखेंगे और सिल्लू से पी के पेट भर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, जहाँ तक जरूरत कम रहेगी तो शरीर की गुलामी से ज्यादा अवसर मिलेगा तो अच्छा रहेगा, फुर्सत रहेगी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वहाँ पहुँच करके भी वही व्यक्तित्व की पूजा शुरू हो जाती है। क्या हो गया तो हम तो ऐसा कर सकते हैं, हम तो ऐसा कर सकते हैं, हम तो बीमारी दूर कर सकते हैं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, बस अब चला। तो किसी दिन हीरा मोती से सजा करके सोचते थे कि हम बहुत बड़े हैं, किसी दिन कारण शरीर की स्थिति की शांति में अभिव्यक्त होने वाले चमत्कारों से व्यक्तित्व को सजा लिया जाता है और कहा जाता है कि हमको बड़े शक्तिशाली। तो महाराज कहते हैं कि योग का भोग हो गया, सुखों का भोग तो आदमी सहज से त्यागता है। जिस साधक के चित्त में अविनाशी जीवन की लगन लगती है तो सुखों का भोग तो वह सहज से छोड़ देता है, लेकिन योग की अभिव्यक्ति में भोग को त्यागना बहुत विकट घाती है, कठिन बात है। लेकिन उसने स्वामी जी महाराज ने उसको कितना सहज कर दिया हम लोगों के लिए। कहते हैं कि अगर तुम सावधान रहोगे, योग का भोग नहीं करोगे तो क्या होगा कि उस शांति में से, उस अपने आप से ही योग की शक्ति में एक स्वाभाविक गति पैदा होगी। ये वाक्य आज सुनाई दिया और इसके पहले मैंने सुना था अलौकिक गति पैदा होती है, तो उसमें इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, स्वाभाविक भी होगी अलौकिक भी होगी। अलौकिक इस अर्थ में कि उसमें किसी प्रकार से ये करण शामिल नहीं है, जीव अलौकिक है। हाथ पांव आंख नाक इच्छा संकल्प सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम स्फूर्ति कुछ भी उसमें शामिल नहीं है उस गति में, इसलिए वह स्वाभाविक भी है और अलौकिक भी है। तो वो गति अपने आप पैदा होती है, साधक को करना नहीं पड़ता है, साधक को पता नहीं चलता है कि कब क्या हुआ। और वह जो योग की शक्ति है वो उसमें स्वाभाविक रूप से गति आती है और वो गति साधक के अहम को ले जाकर के उद्गम में विलीन करती है। ये स्वामी जी महाराज ने कहा, ये शब्द भी महाराज का अपना ओरिजिनल है, उद्गम में जाके विलीन करती है। उसका अर्थ क्या है कि अब शब्दों के पचड़े में कौन पड़े, कोई कहेगा परम तत्व में, कोई कहेगा ब्रह्म में, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, अलग अलग शब्द हैं। तो कहीं पर निर्वाण कहलाता है, कहीं पर शुद्ध शिला कहलाता है, कहीं पर परम तत्व कहलाता है, कहीं पर ब्रह्म कहलाता है, बहुत से नाम है उसके। तो स्वामी जी महाराज ने वो सब छोड़ दिए, इनमें तो बहस हो सकता है। शुद्ध शिला की धारणा क्या है, निर्वाण की धारणा क्या है, ब्रह्म का रूप निरूपण तो करते 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 शास्त्र के जानने वालों ने बहुत समय शक्ति खपाया, उनके पचड़े में कुछ नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि उद्गम में ले जाकर मिला देती है। अब उद्गम में कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता, उद्गम का अर्थ क्या है कि जहां से आपके अहम रूपी अणु की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें से आप निकले थे, उस अलौकिक गति ने ले जाकर आपको उसमें शामिल कर दिया। तो अब चाहे इसको किसी भी रूपक से समझो और किसी भी मत मजहब पंथ के शब्दावली में समझो, ये अपनी अपनी रुचि और अपनी अपनी बनावट और अपने अपने शिक्षण की बात है भाई, लेकिन सच्ची बात तो यही है। तो उद्गम शब्द ऐसा निरापद है, निर्विवाद है, कि जिसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद उठा ही नहीं सकता। अरे नाम कुछ भी रख लो, नित्य योग किससे होगा तो उसी से होगा जिसमें से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, और किससे होगा जी? और तो किसी से हो ही नहीं सकता है। जिसमें से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उसमें जाकर के तुम झुक गए तो नित्य योग हो गया। तो अविनाशी का अविनाशी योग, ये इन वाक्यों के द्वारा महाराज जी ने उस अविनाशी आनंदमय स्वतंत्र अस्तित्व का संकेत दिया है। तो संकेत ही है, असलियत तो जो उस जीवन से अभिन्न हो जाता है उसको पता चलता है, हम लोगों को क्या पता चले। लेकिन इस पंथ के पथिक जो हैं, इस रास्ते से चलने वाले साधक जो हैं, उनको सावधान करने के लिए ये बातें बहुत आवश्यक हैं और बहुत अच्छी हैं और बहुत आशा देने वाली भी हैं। जैसे कि अहम का शुद्धिकरण होता है, पहले सबसे पहले अहम की शुद्धि होती है। शुद्धि कैसे होती है भाई? तो सत्संग के प्रभाव से होती है। सत्संग का अर्थ क्या है? तो अपने जाने हुए असत के संग का त्याग करो। तो मेरा जाना हुआ असत क्या है? कि मेरी जानी हुई बात ये है कि शरीर जो मेरे पास है वो पहले ऐसा था नहीं, आज जैसा है आगे वैसा रहेगा नहीं, इस पर मेरा अपना स्वतंत्र नियंत्रण चलेगा नहीं। इसलिए यह जानी हुई बात है कि शरीर मेरा नहीं है। इस जानी हुई बात को हम मानते नहीं है, इसको इस शरीर को अपना मानते हैं, इसके बल पर अपने को बलशाली समझते हैं और इसको अपना मानकर इसके सहयोग से सुख भोगना पसंद करते हैं। तो ये असत का संग है। इस असत के संग का त्याग सत्संग कहलाता है। अर्थात अपनी जानी हुई बात का आदर किया मैंने, तो आदर किया तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? कि इस शरीर पर मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, यह मेरा नहीं है। तो किसका है? तो प्रकृति का है, परमात्मा का है, जिसका भी मानो जगत का है। तो उनके लिए इसका उपयोग करेंगे। तो जो लोग असत के संग का त्याग कर देते हैं उनके अहम की अशुद्धि मिटने लगती है। शरीर के प्रति ममता मिटेगी पहले, फिर उसके बाद शरीर की सहायता से सुख भोगने की कामना नाश करने का नंबर आएगा। तो ममता का भी नाश करना है, कामना का भी नाश करना है। तो इस प्रकार से सत्संग के प्रकाश में क्रमशः साधक के जीवन में से विकारों का नाश होने लगता है। तो ये अहम की शुद्धि कहलाती है, अहम शुद्ध होता है। तो मैंने वैज्ञानिक स्तर पर भी देखा और स्वामी जी महाराज के पास बैठ करके भी विवेचन करके देखा, तो मुझे ये पता चला कि जिस अहम को आप उस ब्रह्म से अभिन्न करना चाहते हैं, जिस अहम को आप उस परम प्रेमास्पद के प्रेम में विलीन करना चाहते हैं, उस अहम में जब तक अशुद्धि रहेगी किसी प्रकार की, वो मेल बैठेगा नहीं। पकड़ में आती है बात जी? क्यों? क्योंकि उद्गम हमारा शुद्धति शुद्ध है, निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, तो हम जो यहाँ बैठे बैठे अहम की मिलावट की दशा में उससे अभिन्नता की बात सोचते हैं तो कोई साधना फलित होती नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि पहले सत्संग करो, तो सत्संग के फल से क्या होगा, तो अहम शुद्ध होगा, फिर शुद्ध अहम में जो विशेषताएं आएंगी उनके अभिमान का त्याग करो, उनको अपना मत मानो, तो योग का भोग मत करो। क्यों? वे विशेषताएं अनंत की हैं, तुम्हारी नहीं है। तो ये सब जो रास्ते की तैयारियां हैं ये कहाँ तक ले जाएंगी हम लोगों को, कि आस्था श्रद्धा विश्वास के आधार पर भगवत समर्पण के भाव तक ले जाएंगी, और विचार के आधार पर तीनों शरीरों से असंगता तक ले जाएंगे। तो विचार पंथ के साधक शरीरों की असंगता के लिए ये सारी तैयारी करते हैं, और विश्वास पथ के साधक सर्वस्व समर्पण भाव में अहम शून्य होने की ये तैयारी करते हैं। तो होती है तैयारी, और जिसकी लगन जैसी है उसको उतना समय लगता है, सबको एक समान समय नहीं लगता है। जो बहुत परेशान है, जो बहुत तीव्रता से अपने उद्गम में मिलना चाहता है, अपने प्रेमास्पद से अभिन्न होना चाहता है, अपने निज स्वरूप का बोध चाहता है, तो जो लोग जितनी तीव्रता से उस लक्ष्य से अभिन्न होना चाहते हैं उनको उतना ही कम समय लगता है। और अपने जैसे लोग जिनको थोड़ा दुनिया भी अच्छी लग रही है, अच्छी तरह से खाने पीने जीने की सुविधा बन गई है, समाज में थोड़ा सा स्थान बन गया है, दस लोग अच्छी दृष्टि से देखते हैं तो ये भी अपनी खुराक बन गई है, उनको तो देर लगेगी। ये भी अपनी खुराक बन जाती है, क्या बता। पदाधिकारी होना, धन कमाना और सुख वैभव में रहना वो तो आदमी को पकड़ता ही है, ये साधक कोटि के लोगों के लिए और भी संकट की बात हो जाती है, इसलिए उनको देर लगती है। क्यों? क्योंकि इसी दशा में, जैसी दशा में अपने के लिए मैं कहूँ कि इसी दशा में वो अच्छा लगने लगता है, तो लक्ष्य अभी दूर है, मिला नहीं, पता नहीं रास्ते में कौन घड़ी में कौन सा व्यवधान आ जाएगा, कि कितने दिनों के लिए मेरी यह महाविनिष्क्रमण रुक जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए, कितने मालूम है। फिर भी महाराज अभी जरा ठहरो, अभी थोड़ी देर में आएंगे तुम्हारे पास, ऐसा होता है। क्यों? तो अभी तो अच्छा लग रहा है, तो जिसको थोड़ी थोड़ी साधना, थोड़ा थोड़ा साधन का फल, थोड़ी थोड़ी भीतर की शांति, थोड़ी थोड़ी अपनी विशेषताएं अच्छी लगने लगती हैं, खुराक बन जाती हैं, ठीक तरह से नींद आने लगती है, अच्छी तरह से भूख लगती रहती है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे साधकों को देर लगती है, जल्दी से वो पॉइंट नहीं आता कि शुद्धति शुद्ध अहम जो है सब प्रकार के विकारों के नाश करने के बाद जो शुद्ध अहम रह गया है वो तत्काल ही जा करके उस अलौकिक गति के साथ उद्गम मिल जाए, इसमें देर लगती है। रुकावट हो गई कहीं भी जा करके, तो महाराज जी बारंबार इस बात को हम लोगों को याद दिलाते रहते, और मुझे तो सब तरह की बातों को निवेदन करने का एक शौक भी था और जरूरत भी थी कि भाई सब बात उनको बताई जाए, तो जब अपनी तकलीफ बताओ कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो जब विद्या अध्ययन करने की आवश्यकता थी तो एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पास किया और आगे के लिए और करना है, तो रात रात को नींद नहीं आती थी, अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे। तो मालूम था कि उससे अपने में कोई भी विशेषता नहीं आने वाली है, तब भी उसके लिए इतनी व्याकुलता थी। और अब जब जीवन का प्रश्न सामने आया एकदम आज का आज, हाँ और ना, अभी की अभी सिद्धि और अभी की अभी असिद्धि, मानव सेवा संघ के साहित्य में खूब लिखा है, महाराज जी ने भर दिया है कि जब चाहो तब, अभी तो अभी, के जिज्ञासा की तीव्रता, मांग की तीव्रता और मांग की पूर्ति युगपत है, बार बार लिखा है कि एक साथ हो जाता है। तो मैं कभी कभी बताऊं स्वामी जी महाराज को, महाराज ऐसा कैसे, अभी तो मैं बहुत नींद से सो जाती हूँ, अच्छी नींद आ जाती है, कभी ऐसा नहीं होता कि बीच रात में नींद खुल जाए और उठ करके मैं बैठूं और सोचूं कि अभी तक तो लक्ष्य तक पहुंचे नहीं और गहरी नींद कैसे आ गई। जब संत मिलन नहीं हुआ था तब ये बात थी, बीच बीच रात में नींद खुल जाए और घड़ी की टिक 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 आवाज सुनाई दे तो हृदय की गति तीव्र हो जाए, उठ करके बैठ जाऊं बिस्तर में और सोचूं कि अच्छा घड़ी टिक 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 कर रही है, एक एक टिक के साथ जिंदगी का एक एक पल निकल जा रहा है और अभी तक मेरे जीवन की राह नहीं बनी, अभी तक संत मिलन नहीं हुआ, अभी तक गुरु मिलन नहीं हुआ, अभी तक मुझे जीवन का पंथ नहीं मिला। तो उस समय तो ये दशा थी, बीच बीच में उठ उठ करके रात को बिस्तर में बैठ जाती थी अकेले अकेले और सोचती रहती थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और संत मिलन हुआ और सच्चा मार्ग मिल गया और अपने सामने किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, फिर भी सत्य से मिले बिना बढ़िया भूख लगती है, बढ़िया नींद आती है। तो ऐसा क्यों, वो तीव्रता क्यों नहीं है, कहाँ सो गई वो, कैसे शिथिलता आ गई, ऐसे ऐसे मैं बहुत प्रश्न किया करती। तो महाराज तरह तरह के, अब मेरी मनोदशा को जानते जान जान करके समय समय पर उनको सलाह दे दिया करते, तो एक दो बार उन्होंने मुझसे ये बताया कि अरे भाई अभी मौज लो दुनिया का, अभी मौज लो जी, तो इसी में शिथिलता होती है। और अपनी कथा बताई थी उन्होंने, कहा कि देवकी जी तुम लोगों की तरह हम पढ़े लिखे तो थे नहीं भाई, हम तो जीवन की घटनाओं से सीखते थे। तो एक घटना उन्होंने सुनाई अपने जीवन की, कहा कि खेत में गांव के बाहर एकांत में, गांव के बाहर एकांत तो होता ही है, रात्रि को मैं कहीं पर बैठा था, कहते थे महाराज कि गुरु के पास जाने के बाद वो कभी ऐसा याद नहीं है कि 2:30 बजे रात के बाद कभी हम लोग सोते थे, केवल अपने बारे में नहीं, महात्मा के पास जितने नए नए लड़के गुरु शिष्य बन करके आए जीवन के उत्थान के लिए, कहते थे तुम लोग क्या सत्संग करोगे। और उन दिनों में तो बड़ी व्यग्रता थी स्वामी जी महाराज को, सन्यासी हुए पीछे और लक्ष्य की प्राप्ति का आनंद आ गया उनको पहले। स्वामी विवेकानंद जी जानते हैं, यही हम लोगों को कुछ कुछ बता दिया करते हैं, इनको मालूम है। तो महाराज जी ने एक घटना सुनाई, कहा कि एक रात को मैं ऐसे ही अपनी व्यग्रता में गांव के बाहर खेत की मेड़ पर अकेले कहीं बैठा था, तो रात में वो खेत में जो जगह जगह मचान बना करके और जानवरों से अनाज को बचाने के लिए रखवाले जगाया करते हैं आपस में एक दूसरे को, उनकी आवाज सुनाई देती थी और किसी की नहीं। तो कहे स्वामी जी महाराज कि ऐसे कलेजे में हलचल मचे उनकी ध्वनि को सुन करके, एक दूसरे को पुकार पुकार के चिल्ला रहे थे और टीन में कनस्तर के भीतर कंकट पत्थर डाल के उसको हिलाते हैं जिसमें कि जानवर आकर के पौधों को काटे नहीं, भागते रहे। तो स्वामी जी महाराज कहें कि मेरे भीतर ऐसी बात उठे, मैं कहूँ कि अच्छा, मुट्ठी भर अन्न के लिए ये रखवाले सारी रात जग रहे हैं और तुम प्रेमास्पद से मिलना चाहते हो और तुम्हें नींद आती है। अगली बात बताइए, प्रेमास्पद से मिलना चाहते हो और तुम्हें नींद आती, मुट्ठी भर अन्न के लिए ये रखवाले सारी रात जग रहे हैं और तुम प्रभु से मिलना चाहते हो और तुम्हें नींद आती है। जीवन की कथा बड़ी ही सरस है और जहाँ से हमने यात्रा को आरंभ किया है वहीं से इस रस की वृद्धि आरंभ हो गई है। उसने संपूर्णता में व्यक्तित्व को स्थान करके रखा है। आज अब परिस्थितियों का परिवर्तन साधक भाई बहनों को उस पंथ पर से डिगा नहीं सकता, लेकिन अफसोस है अपने लिए कि जो कदम कदम पर इतना सावधान करता रहता है और महाराज जी के कहने के अनुसार जो प्रेमी जनों से मिलने के लिए उनसे अधिक आतुर है, उसकी प्रियता, उसकी छत्र छाया, उसका संरक्षण, उसकी तत्परता को अनुभव करने के बाद भी अगर उससे मिले बिना मुझसे रहा जाता है तो मैं अपने लिए कहूंगी कि धिक्कार है इसकी, अपने लिए कहूंगी, क्योंकि मेरे लिए उनके अतिरिक्त और कोई है नहीं। श्रोता के रूप में वे स्वयं ही विद्यमान है मेरी राग की मूर्ति के लिए। इसलिए अब हमारे ध्यान में आ रहा है कि मुझे चुप होकर देखना चाहिए कि बोलने का राग खत्म हुआ कि नहीं, शांत रहा जाता है कि नहीं, बिना बोले जो अनमोल जीवन है उसमें हमारी स्थिति होती है कि नहीं, ऐसा अब मुझे देखने का कोशिश है। अब शांत हो जाइए, फिर देखिए।